भक्त प्रचारका अनंत श्री मुहूर्ता स्वामी पाला अध्यक्ष पदम अलंकुर्वाणा सप्ताचार्य श्री वासुदेव जी महाभागा दोष्ठ्यान समादाता बरी आंसो कृत्वकल्पा अपरंच भगवदीय वैष्णव संत मातरो भगंड्यश्च यद्यपि देव वाणिया में यदि प्रवचन स्यात् इति युक्तम मन्यामे तथापि समेषां सौकर्यार्थं हिंदी भाषाया में भगवत आश्रय लीला है श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्व भक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परंगमः दशवीं लीला विशिष्ट श्रवण द्वारा कर्ण रंध्र के माध्यम से दशवीं लीला विशिष्ट भगवान पुष्ट पुरुषोत्तम ही श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय है उसी को वस्तु शब्द से कहा जा रहा है ध्यान रखना वो ही अद्वितीय वस्तु है बदंत तत्त्व विना तत्त्वं यज्ञानवद्वयं ब्रह्मेत परमात्मे भगवान इति सत्यते न तु कामे विद्यते उपनिषद ही ब्रह्मेत ही पौराण ही परमात्मे ही सात्वते ही भक्त ही भगवान इति सत्यते न तु विद्यते तो वो वस्तु अद्वितीय तत्व क्या है जानित परम तत्व यशोदो सन्निधानतम बिना चुदात वस्तुतराम नवाच्यम सहेव सर्वम परमार्थ भूता सर्वेषाम भावानाम भावार्थो भवति स्थितः तस्याम भगवान कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यतम वस्तु प्रस्तुत वेद नाद लहरी निर्वाण निर्व्यापुनम इसलिए वो अद्वितीय वस्तु तत्व कृष्णात् परम किमपि तत्व महम में जाने कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि अनेक उद्धरणों के माध्यम से अद्वितीय वस्तु तत्व और भागवत तो कल्प वृक्ष है जैसा अधिकारी आता है उस अधिकारी को वैसा ही फल दान देता है यद्यपि अन्य जो वेदांती है केवल अद्वैतवादी उनके लिए उसका कैवल्य ही प्रयोजन है लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद देव गोस्वामी का गौरांग महाप्रभु को ये अभीष्ट नहीं है क्यों उनके यहां ब्रह्म जो है वो अनंत गुण गणानव ब्रह्म का स्वरूप है ब्रह्म एक ब्रह्मी ब्रह्मो बुरा यशमन अनंतता है और आत्मा यहां अन्य सिद्धांत के अनुसार व्यापक नहीं है यहां अणु है इसलिए अणु को भगवत प्राप्ति में उपयोगी यहां केवल जो है वो प्रेम लक्षणा भक्ति ही है इसलिए केवल आया हा कालांतरों में जब प्रयोदय होता है तब ये प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। इसलिए जिनको आत्मसमत्व दिया है भगवान ने, वो भी इस प्रेम लक्षणा के लिए इसी विहार भूमि में यही प्रार्थना कर रहे हैं। आसाम हो चरण रे दशा वंश बंदे नंदी राम पाद रेणु भुवन त्रयम्। इसलिए जीव अणु है, अंशो नाना रूप देखा दास ब्रह्मदाता ब्रह्म पितवा ब्रह्मदाता धर्मदाता इत्यर्थः। इसलिए अणु है, यदि भगवत ब्रह्मानुभूति अथवा भगवत रसानुभूति करनी है तो उसमें द्वैत लाना ही होगा। इसलिए भागवत जी में आता है इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदत्तेन माया सतानां नन्दारकेण साकं प्रजौरु पितृपुण्य पुञ्जा। ये अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद की विषय है और इसका जो जिज्ञासु है वो इसी का अधिकारी है। और ग्रंथ के साथ में प्रतिपाद की प्रतिपादक भाव है और कैवल्यिक प्रयोजन प्रेम लक्षणा की प्राप्ति हो जाना यही इसका प्रयोजन है। कितने ही शब्दों में कहते हम जो है वो विराम दे दिए, विचार तो इसमें बहुत है, सबको ही कहना है। इसलिए इतने ही शब्दों से अपनी वाणी को हम अलंकृत मानते हुए और विराम करते हैं।
बहुत सुंदर आपने बताया कि प्रेम लक्षणा भक्ति कैवल्य प्रयोजन का तात्पर्य प्रेम लक्षणा भक्ति ही एकमात्र श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है, जैसा आपके वक्तव्य से अनुमित हुआ। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अब मैं निवेदन करता हूं पंडितवर्य यहां के ही वरिष्ठ माधव संस्कृत विद्यालय के विभागाध्यक्ष परमानंद श्री जगदीश प्रसाद जी शास्त्री जी से कि वे भी कृपया 10 मिनट में ही हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी शास्त्री
Yeah.
से भक्ति या भक्तों का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज ने अपनी टीका में इस बात को स्पष्ट रूप से उच्चारण किया गया है, कहा है कि तन्निष्ठम ततोपि निसृत्य तिष्ठति इति तन्निष्ठम। ज्ञान वैराग्य अभिलाषा रहता अनन्य भक्ता केवल पद वाच्या, केवल पद कौन के लिए है, जो भक्त हैं जिनको स्वर्ग इत्यादि किसी प्रकार की अभिलाषा की आकांक्षा नहीं है, उनको केवल शब्द से व्यवहित किया जाता है। केवल आराम भावो कई वल्यम, केवल जो भक्त हैं उनका जो भाव है उसी भाव को कैवल्य पद से व्यवहित किया जाता है। ज्ञान स्वर्गादि अभिलाषा रहता भक्ता अनंत भक्ता केवल पदवाच्य केवलानाम भाव कैवल्यम। अतः प्रेम लक्षणा भक्ति वो ही कैवल्य है, उसी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रयोजन बताया गया है। और ये भक्ति ही इस भवसागर को पार करने में समर्थ भी है, इस बात को भी भागवत में निर्दिष्ट किया गया है। संसार सिंधु मत दुस्तर मुक्ति तीर्षो नाम्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तम लीला मन करती है, ध्यान करती है, उसी परंपरा को लेकर के हमारे बार बार जाके बाल संप्रदाय का प्रति सनकादिक की परंपरा को लेकर के निर्माण का जाके निर्माण संप्रदाय प्रति और भगवान शंकर की परंपरा को लेकर के आचार्य विष्णु स्वामी ने विष्णु स्वामी संप्रदाय को जन्म दिया। अतः
सालों
अधिकार किया है। रामायण में भी तुलसी दास कहती है सबलो पासक मोक्ष न नहीं अति में महुराम भारत बिज नहीं। जो सबल की उपासना करते हैं वो तो भगवान के द्वारा रहने पर भी मुक्ति को तो ग्रहण नहीं करते, उनको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते। तो कई वर्ग का अर्थ यदि मुक्ति होता तो वैष्णव लोग कभी उसे लेने की कांक्षा ही नहीं करते। इस पुराण को पढ़ने के प्रति अग्रसर ही नहीं होते। दूसरे पुराण की एक काव्य है, तो काव्य के विषय में अपने पुराण में लिखा है चतुर वर्ग फल प्राप्ति सुखा धर्मी। चतुर वर्ग में मोक्ष अपने आप आ जाता है, प्रसाद चतुर्थ में भोग चाहता है धर्म अर्थ काम भोग। तो जब काव्य के पढ़ने मात्र से चतुर वर्ग फल प्राप्ति सुखा धर्मी आदमी काव्यादेव्य दृष्टि नो तत्वरूपम विरूप्यते, काव्य के पढ़ने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और भागवत की एक काव्य है इसके मोक्ष प्राप्ति हो ही जाती, फिर इसको प्रयोजन बताया जाता है। केवल एक प्रयोजन के आधार पर है कि प्रणय के बाद जो केवल अवशिष्ट रहता है वो केवल कृष्ण। अगर प्रणय के बाद कोई शेष बचता है तो वो श्री कृष्ण ही। तो केवल श्री कृष्ण तस्य भाव सेवा भाव तदेव कैवल्यम्। भगवान श्री कृष्ण का जो सेवा भाव है वही कैवल्य, वही वैष्णवों का एकमात्र प्रयोजन है। अब वो सेवा भाव भक्ति सेव्य दया भक्ति भक्ति के द्वारा ही करते है। भक्ति ही सेवा भाव का दूसरा पर्याय है। जो दो प्रकार से वृत्ति के लिए श्रवणम कीर्तनम लिखो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासनम सत्यम आत्म निवेदन, ये नौ प्रकार की भक्ति जो है यही भागवत शास्त्र के पठन पाठन का एकमात्र प्रयोजन है। किस प्रकार हमको भगवत भक्ति प्राप्त हो इसलिए हमको भागवत शास्त्र का अध्ययन अनुशीलन करना चाहिए, यही श्रीमद् भागवत का एकमात्र प्रयोजन है। इतना कहके मैं अपने दफ्तर को समाप्त।
श्री बलदेव प्रसाद जी शास्त्री जी महाराज को जिन्होंने हमें बताया कि श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है और मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की दुर्लभता निश्चित। श्रीमद् भागवत में जगह जगह मुक्तिम ददाति कदाचित स्मरण भक्ति योग में प्रसिद्ध ही है, आपने बहुत सुंदर बताया। और कैवल्य एक प्रयोजन आपने हम सबको बताया कि केवल एकमात्र श्री कृष्ण भगवान की सेवा ही सार रूप इसका प्रयोजन है। बहुत सुंदर आपका प्रवचन हमने सुना। इसके अनंतर इसी परंपरा में मैं परम रसिक विद्वान वृंदावन से पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर श्री अच्युत लाल भट्ट जी से प्रार्थना करता हूं कि वे भी इतने ही समय में अपना मार्गदर्शन विवेच्य विषय पर हमें प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर श्री अच्युत लाल भट्ट जी महाराज।
आत्मांतरयामी पुरुष की सोच्यांश भवत
कल्याण कृष्ण चैत
भागवत सूर्य है कृष्ण स्वधाम
बढ़कर एक भक्ति का प्रतिपादन करने वाला है वह है राग भक्ति। सूर्य के द्वारा उस राग भक्ति को ही संगीत किया जाता है। श्रीमद् भागवत के लिए द्वादश स्कंध में एक रूपक दिया गया और उस रूपक से संबंधित ही आज का विषय है कि यह श्रीमद् भागवत की संहिता आत्मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम वस्तु द्वितीय तन्निष्ठम कैवल्यक प्रयोजनम।
कैमरे का अर्थ हम जो भक्ति ले रहे हैं वहां यदि कोई ये पूर्व पक्ष रखे कि कैवल्य का अर्थ आप ब्रह्म सारी चीज ही क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कठिनाई है उसको ले लीजिए, ब्रह्म सारी चीज क्यों नहीं, यहां कैवल्य की आप जो देवताया भाव ये जो अभी श्री विष्णु जी ने पहले आपने विषय का प्रवर्तन करते हुए जो बात कही थी, यदि केवलाया भाव यही बात कह रहे तो ऐसा क्यों कह रहे, और यदि इस बात को स्वीकार किया जाए तो इसमें कुछ तर्क दिए जा सकते हैं कि कैवल्य ही तो
श्रुतः स्वरूपात् भाषणात् इति अच्युतः परन्तु हि वस्तुतः अच्युताः। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, सभी विद्वान समर्थ विद्वान हैं, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है, और विषय की गंभीरता को देखते हुए वो बहुत समय तक उसका विवेचन कर ही सकते हैं। तथापि सभा के एक समय की हमारी अपनी विवशता है और उसको सभी आप ध्यान में रखें। मेरी पुनः पुनः प्रार्थना, इस परंपरा में मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहां के ही परम विद्वान साधु पुरुष श्री भक्ति वेदांत तीर्थ जी महाराज को। मुझे लगता है कदाचित उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर मधु खंडेलवाल वे पधारे और अत्यंत अल्प समय में ही समासा व्यास योग्यता, समास शैली और व्यास शैली दोनों ही प्रवक्ताओं के लक्षण हैं, तो समास शैली में ही अपना वक्तव्य हमें प्रदान करने कृपा करें डॉक्टर मधु खंडेलवाल।
गंभीरा में
राधे श्रीमद भागवत का चिंतन करते थे, तो उस श्रीमद भागवत में कैवल्य प्रयोजनम की बात बहुत सारे अर्थों का सोर्स है, स्रोत है। हमारे शंकर आचार्य रहे हैं भारत में, उन्होंने कैवल्य को मोक्ष परक कहा, और हमारे जो गोस्वामी थे चारों संप्रदायों के, उन्हें इस बात को निरस्त करने में जरा भी समय नहीं लगा कि ये असुरात्मक विचार है। रावण जिसने सीता देवी को स्पर्श करने की कोशिश की, तो उसका जो अहम ब्रह्मास्मि का राग था वो निरस्त हो गया। उसी प्रकार से कंस ने, जो आत्मज्ञानी अपने आप को समझता था, ब्रह्मवादी समझता था, ब्रह्मचिद समझता था, वह भी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन से उस ज्योति को प्राप्त हो गया। महर्षि वशिष्ठ वे भी परम ज्ञानी थे, जब उन्होंने योग वाशिष्ठ लिखा तो भगवान श्री राम की स्तुति निःशक्ति पर ब्रह्म के रूप में भी, भगवान श्री राम को बहुत दया है, और उसके बाद उन्होंने उनमें भक्ति का संचार कर दिया। इसी प्रकार से अन्य अन्य उदाहरणों से हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं शुकदेव जी, वह भी निःशक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन जब श्रीमद् वेद व्यास ने इत्यादि इत्यादि जब अपने प्रचारकों के द्वारा यह रूप सौंदर्य और गुण सौंदर्य की उनको अनुभूति कराई, तो उनका सारा ज्ञान धरा की धरा रह गया। श्री सुखदेव गोस्वामी सविशेष ब्रह्म से होते होते उद्धव जी के द्वारा स्तुति करवाने लगे, आशा बहु चरण रेणु जोशा। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी के अतिरिक्त हम देखते हैं कि सनक चंद्र सनत कुमार वे भी निर्विशेष ज्ञानी थे। जब किसी सुकृति के बल से वो परम वैकुंठ धाम में गए और वहां भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की गंध का सेवन किया, तो वो भी सब विशेष ज्ञान से भी ऊपर उठकर आत्मनियोग कर दिया, और उनका जो ब्रह्मत्व था परमात्म था वो विगलित हो गया, और भगवान श्याम सुंदर की राजनीत स्तुति आज भी करते हैं। हमारे जो द्वादश भागवत गण है, शंभु नारायण चंद्रसन इत्यादि, कहीं भी जो भागवत खंड के ज्ञाता है, और शंभु अहम वेदी शुको वेदी व्यासो वेदी न वेदी व श्रीधर वेदी सर्वम श्री नरसिंह प्रसाद रहा, तो श्रीधर की टीका में कहीं भी निराकार ब्रह्म की या निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं है। कैवल्य के प्रयोजन यहाँ जो भेदाभेद बात की हमारे अच्युत भट्ट जी ने बताई थी, भेदाभेद क्या स्वगत सजातीय विजातीय भेद पर ब्रह्म परमात्मा में नहीं है, जबकि जीव स्वगत सजातीय विजातीय भेद से युक्त है। हमारे उंगली हमारे आंख नाक सब में अंतर है, जबकि ठाकुर जी किसी भी अपनी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम मनुष्य मनुष्य में अंतर है, भगवान के किसी अवतार में कोई अंतर नहीं है। हम में और कुत्ते गधों में अंतर है, लेकिन भगवान में विजातीय तत्व है। इसी प्रकार से विचार किया जाए कि जो ब्रह्म है, क्या ये संसार उस ब्रह्म का परिणाम बात है? यदि हम कहें कि इस माता से इस बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या माता उस बच्चे को पैदा करने वाली हो गई? उस पैदा करने वाले का जो मूल आधार है वो तो पिता है। इसी प्रकार से कर्ता और क्रिया के बीच में एक करण होता है, और वही करण इस संसार में सारे कार्य किया करता है। यह करण है शक्ति। भगवान विभिन्न शक्तियों के स्वामी है, और ये शक्तियां उस शक्तिमान में निहित रहती है। तो ब्रह्म और आत्मा जीवात्मा कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। अणु अणियान और वह तो वही यान, जीव अणु से अणु है, वो व्यापक से व्यापक है। जीव जब ब्रह्मत्व की ओर बढ़ता है तो वो भगवान से दूर हो जाता है, वो त्रिगुणा अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और बद्धा अवस्था में
भगवान की बात तो बहुत दूर है, भगवान के नाम में ही परम शक्ति है। जब उद्धव भी विचलित हो रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यही कह रहे थे कि उद्धव मेरा संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में निहित है। तो इस प्रकार से भगवान की जो आत्मा है, भगवान आत्मा राम है, आत्मकाम है। ब्रह्मा जी को जब चतुश्रुति का ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा जी जब ज्ञान सुनते हैं तो ब्रह्मा बड़े अभिभूत होकर कहते हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये ज्ञान सिखाया था। और ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं गोविंद मादि पुरुषम ब्रह्म नमामि। वह ब्रह्मा जो गोपाल वेश बार बार धारण करते हैं, जब भागवत में हम देखते हैं ब्रह्मा मोह हुआ है तभी भी उनको वही वैशी थाली, पीताम्बर थाली, वेणु थाली, विवर थाली, श्याम सुंदर का दर्शन होता है, जिसके हाथ में कवल है, दही भात खा रहा है। तो जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते, तो जो ब्रह्म है ये भगवान का चित्त शक्ति अंश विशिष्ट है, अंश और अंशासी का संबंध है। ममे मांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव सनातन है, जीव विशुद्ध है, लेकिन माया की विकृति के कारण जीव विकारित हो जाता है और इस तरह से त्रिगुणा अवस्था में और माया में अपने आप को फंसा हुआ देखता है। इस कंद पुराण के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि आत्मा को राधिका, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। भगवान श्री कृष्ण का देह देही और आत्मा ये दोनों परस्पर भ्रमण करते हैं। जीव हरण में जब आवरण भंग लीला होती है उसके बाद कुछ लोग ये व्याख्या करते हैं कि आवरण भंग हो गया, आत्मा परमात्मा एक हो गया, एक हो गया तो फिर रास किसके साथ हुआ, और रास की परावती तो व्योम में समाप्त होती है। वह रास समाप्त नहीं होता, वह रास जयदेव जी को अंतर स्फूर्ति कराता है। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने मनमाही। वही रास हम भक्तों का, वृंदावन की उपासकों का, हमारे रूप गोस्वामी का सर्वस्व बन जाता है। तो ब्रह्म और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। यदि हम ये कहें कि वह व्यक्ति वृंदावन वह व्यक्ति बनने चला गया और वहां पर लीन हो गया, लीन होने का मतलब क्या, वो पेड़ बन गया या पौधा बन गया या पत्ता बन गया। यदि जीव की अपनी स्थिति है, अपनी सत्ता है, वो स्वयं ब्रह्मवादी है, तो उसे क्या आवश्यकता है उस परम ब्रह्म का जाप करने की, इतने कष्ट साध्य साधन करने की, अनुभव की अभिलाषा करने की। वृत्रासुर जैसा व्यक्ति भी ना कुछ किसी प्रकार की सालों के सामीप्य सालों में किसी प्रकार का वो सिद्धि नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपनर्भव भी नहीं चाहता। तो इस प्रकार से ब्रह्म और आत्मा ये कभी एक नहीं हो सकते। ब्रह्म की परावती भगवान में समास होती है और आत्मा जीवात्मा वो भी मुक्त है, विशुद्ध सत्व है, लेकिन माया से विपरीत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भवान का भी वर्णन है या कथु भागवान का वर्णन है, राजर रघुवर संवाद इत्यादि में हम देखते हैं कहीं भी किसी भी 140 स्तुतियां है श्रीमद् भागवत में, पर कहीं भी किसी ने यह प्रार्थना नहीं कही कि हे भगवान मुझे अपने आप में मिला दो। भगवान से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, 12 रसों का रसा स्वादन होता है, वे रसों वही सह है। इसलिए जो ब्रह्म है वो निशक्ति विशेष है, वो हम लोगों का उपास्य नहीं है। और हमारे आचार्यों ने बहुत समय पहले से ही ये असुरों को मोहित करने वाली जो विद्या है उसका नाश कर डाला है। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। श्रीमद् भागवत की जितनी भी लहरियां हैं, छनकार हैं, छनकनियां हैं, वो आज भी हम सबको आप्लावित कर रही है कि उस परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लिंगम जो है उसकी प्राप्ति के लिए, उस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जो हमारा प्रयोजन है उसके लिए प्राण सर्वस्व
जिसमें कि यह वर्णन हुआ है सर्व वेदांत सारम जब ब्रह्म आत्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। इस पर आपने प्रकाश डालते हुए अतिव हृदय और गर्भ रसायन बनाया। इसके साथ आप लोगों की सोच मेरे लिए कुछ कहना अति दृष्टता मात्र है। मैं अतिव बालक हूँ और बालक बुद्धि उसमें से गुरु आज्ञा को मानते हुए आपके सामने दो एक शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। श्री व्यास जी के कृतित्व में उन्होंने वेद वेदांत उपनिषद पुराण इतिहास जितने भी शास्त्र बनाए समस्त शास्त्रों का सार निष्कर्ष कर उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रणय किया। इसलिए सर्ववादी समझते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ एक ही ग्रंथ श्रीमद् भागवत। इसके अंतर्गत उन्होंने उपक्रम और उपसंहार के द्वारा जिस वस्तु को निरूपण किया है जैसे उपक्रम में देखा जाता है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जगज्ञानं अद्वयं कि अद्वय ज्ञान पर तत्त्व ही एकमात्र तत्त्व वस्तु है और उसी का निर्णय उपसंहार में जो कि वस्तु अद्वितीयम के रूप में आपने वर्णन किया है जो अद्वय ज्ञान पर तत्त्व है वही अद्वितीय वस्तु है। अब इसी के ऊपर में देखा जाए दूसरे श्लोक में जब कह रहे हैं कि वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवम वास्तव वस्तु और यहाँ वस्तु का वर्णन हो रहा है। वास्तव वस्तु क्या है? भक्ति भक्त और भगवान ये तीनों ही वास्तव वस्तु हैं। अतः तीनों का स्वरूप निरूपण करते हुए भगवान के लीला चरित भक्ति की भक्ति का विश्लेषण भक्ति की महिमा और भक्तों का प्रेम आदर्श भक्ति का जो भक्तों के जीवन चरित्र के साथ में ये सभी वर्णन किया गया है। अतः ये वास्तव वस्तु भक्ति भक्त भगवान तीनों का तत्व श्रीमद् भागवत में निरूपण हुआ है। उसमें अद्वितीय वस्तु जो कहा गया है अद्वय ज्ञान पर तत्व अभी अभी पूर्ववर्ती वक्ता महोदय ने कहा कि अद्वय ज्ञान पर तत्व उसी को कहा जाता है कि न द्वयमिति अद्वयम जिनका द्वितीय कोई नहीं हो। दो वस्तु में जहां समान समान दो वस्तु होता है वहीं पर भेद होता है। परंतु विश्व जगत में ऐसा कोई भी वस्तु है जो कि भगवान की समता कर सके और उनकी प्रतिद्वंदिता में आए इसलिए कोई भी वस्तु नहीं होता है। अतः उसका निर्णय करने के लिए कहा है कि स्वागत स्वजातीय विजातीय भेद रही अद्वय ज्ञान पर तत्व वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान पर तत्व कैसे वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया कि स्वागत स्वजातीय विजातीय भेद रही। दो समान वस्तु में भेद होता है तो समान वस्तु संसार में कोई है ही नहीं और उनकी प्रतिद्वंदिता करने वाले नहीं थे। अब स्वागत भेद सर्वगत भेद होता है जिनके अंदर शरीर और आत्मा में भेद है क्योंकि आत्मा चेतन वस्तु है शरीर जड़ है। परंतु भगवान का आत्मा और उनका स्वरूप दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनका शिविग्रह और जिनको ब्रह्म कहा जा रहा है और जिनका स्वरूप या आत्मा दोनों में कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि देह देही भेदा नास्ति नेश्वरे विद्यते नचि देह और देही ईश्वर में कोई भेद नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने कहा है हे अर्जुन जन्म कर्म चौमे दिव्यम अलौकिकम अप्राकृतम इति इसमें यहाँ वर्णन किया गया कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक अप्राकृत है। ये कोई प्राकृत जन्म या प्राकृत शरीर नहीं है। यहाँ तक कि पद्म पुराण ने कहा है जो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मा कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण के जो कोई कहता है कि उनका भौतिक देह है तो सर्व स्वाद बहिष्कार स्रोत स्मार्त विधात पश्य सूर्य पृश्य गव्य घृतम इस प्रकार से शुद्ध शुद्धिकरण की बात नहीं, जो कोई कहता है कि भगवान का भौतिक शरीर था, भगवान का कभी भी इस प्रकार स्वगत भेद नहीं है। इसलिए ये सिद्ध किया कि अपाणी बाल और जबर रही था, जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, पश्चात चक्षु शक्ति रोक्त कारण आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ से ग्रहण कर रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पैर से चल रहे हैं। प्राकृत निषेध करे अप्राकृत वर्णन, प्राकृत का निषेध करते हुए अप्राकृत स्वरूप का वर्णन किया गया है। और भी कहते हैं जाजर सुधीर जलपति निर्विशेषम सभी रखते सभी रखते सविशेषम एक बा, जो जो श्रुति निर्विशेष स्वरूप में भगवान का वर्णन करती है वही सविशेष रूप में प्रतिपादन रही है। इसलिए सविशेष एव बलियत सविशेष ही भगवान होता है। भगवान का साकार सच्चिदानंद स्वरूप वह अप्राकृत स्वरूप है, जो कि अभी अभी हमने सुना गुणम पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम मनुष्य वेश मनुष्य रूप में वह गुणम पर ब्रह्म है, अतएव उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं, स्वगत भेद नहीं। स्वजातीय भेद जितने भी विष्णु दत्त है राम ने सिंगम राहत कल के आदि जितने भी अवतार आते हैं पुरुष अवतार गुणा अवतार जुग अवतार लीला अवतार मन्वंतर अवतार सप्ताश अवतार वे सभी भगवान कृष्ण से ही आए हुए हैं। इसलिए उपक्रम में यह निर्णय किया यदि चांस कला भूष कृष्णस्तु भगवान स्वयं यदि अवतार अंश कला पुरुष अंश कला ये सभी अवतार परम पुरुष के कोई अंश कोई कला कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसमें कोई दो विधा नहीं दो राय नहीं है, एक ही राय कृष्णस्तु भगवान। इस प्रकार कृष्ण ही पर ब्रह्म वे ही स्वयं भगवान पर आत्मन करते हैं, अतः जितने भी अवतार सभी उन्हीं के कोई अंश कोई कला है। इसलिए स्वजातीय भेद रही बीजातीय जितने जीव और जगत जो कुछ भी आया है ये सभी नारद जी कहते हैं भगवान ही वर्गी करो, भगवान ही है, भगवान से ही सारा विश्व जगत आया है, ये पृथक कुछ भी नहीं है परंतु इतर इतर है अर्थात पृथक है। ये भौतिक जगत जड़ पदार्थ नाशवान है परिवर्तनशील है पर भगवान का कभी परिवर्तन नहीं होता है। संपूर्ण विश्व जगत अचिंत भेद सिद्धांत के अनुसार अचिंत भेद अवेद के अनुसार सभी कुछ उन्हीं से ही आया हुआ इसलिए अभिन्न है और भेद इसलिए कि जड़ और चेतन में भेद। इस प्रकार अचिंत भेद सिद्धांत भेदावेद सिद्धांत के द्वारा यही निरूपण किया है कि अत्यंत वही वस्तु अद्वितीय है ब्रह्म आत्मिक लक्षण ब्रह्म आत्मा भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है वही परमात्मा है और वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनके चारों में अभी आपने हम लोगों ने श्रवण किया प्रेम लक्षण भक्ति यही कैवल किया है क्योंकि भागवत में मुक्ति को तो कहीं ब्रह्मा जी ने कहा अज्ञान संगम भव बंधन मोक्ष भव बंधन जैसे अज्ञान कृत ऐसे मुक्ति भी एक अज्ञान है। श्री रसद कह दिया कि मुक्ति भी अज्ञान है अतः मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं। पूर्ववर्ती भक्ति महोदय ने जो कि कहा है भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहते दियो मानव अभी न गिनती भगवान भले ही देना चाहे भक्त कभी नहीं चाहते बिना उनकी सेवा के। इसलिए भक्त क्या चाहते हैं वो भक्ति चाहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। भागवत में भक्ति के विषय में वर्णन करते हुए यह दिखाया भक्ति की दो भक्ति का दो स्वरूप हो जाता है एक संभ्रम भाव युक्त दूसरा है विश्रम्भ भाव युक्त। संभ्रम भाव जहाँ पर वैश्वर्य प्रधान भक्ति और माधुर्य प्रधान भक्ति माधुर्य प्रधान भक्ति केवल ब्रजवासियों में है। इसलिए ब्रजजनों का अनुगत्य करते हुए उनके भावों का अनुसरण करके अपने अपने साधन अपने अपने रस के अनुसार उनका अनुगत्य करते हुए उस भाव को प्राप्त करें उस भक्ति को प्राप्त यही जीवन का सार है, श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। इतना कह करके मैं आज अपना वक्तव्य करने की चेष्टा हूँ। और एक निश्चय ही है सज्जनों की यहाँ सभी शास्त्र पारंगत विद्वान विद्वान है, आपको नित्य नई बातें उनसे शरण करने को मिल सकती है। जहां तक एकत्व की बात है, ब्रह्मात्म एकत्व लक्षणों एकत्व की बात है, तो मुझे तो एकत्व से भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी जो मान्यता है और यह है कि ब्रह्मात्म एकत्व लक्षणम ब्रह्म शब्द से ग्रहण होता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, और ध्रुव मात्मा स्थिति राधिका आत्म शब्द से ग्रहण होता है आत्मा शब्द से श्री स्वामी जी राधा रानी का। तो उनकी एकता यदि रास में मिलन नहीं होगा तो एकत्व तो कैसे होगा। तो जो उनके एकत्व तो को लक्षित कराए बताए ब्रह्म और आत्मा की एकता को समझाए, मैं तो समझता हूँ श्रीमद् भागवत वही है और वही उसका फल वही सार है। इसलिए इस प्रकार के एकत्व को मैं तो समझता हूँ उचित ही है सर्वथा। और दूसरे रूप में यदि उसकी अर्थ किए जाए तो वो भी विद्वानों की अपनी परंपरा है, रसिकों की अपनी परंपरा है। और अब मैं प्रार्थना करता हूं यहां विराजमान परम श्रद्धे विद्यावयोवृत्त श्री द्वारकेश संस्कृत विद्यालय के पूर्व प्राचार्य मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री आचार्य श्याम सुंदर जी चतुर्वेदी जी महाराज से कि वे यथा समय अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने की कृपा करें। आचार्य श्री श्याम सुंदर जी चतुर्वेदी
करना है तो पूज्यों के लिए मंदन और सनातन
तुम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय होता ही है। तो भागवत को जब शास्त्र दृष्टि से देखे तो एक ही श्लोक में चार उपाध्याय बता दी। यहां तो भागवत के सभी विद्वान हैं, जानते ही है धर्म तो जिंदगी तो
गोष्ठी के लोग सुनते कि भागवत का प्रयोजन और एक श्रीमद् भागवत का विषय, तो इसी के ऊपर मैं कह रहा था कि ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण का तृतीय श्लोक धर्मम प्रोजित गई थे मुक्त परमो धर्मक्षर आराम सदाम वेद्यम वास्तव मत वस्तु तापत त्रयोलोलनम। तो इस श्लोक में विषय संबंध कार्य प्रयोजन चारों चीजों का निर्देश है और ये अनुबंध चतुष्ट किसका हुआ करता है शास्त्र का। तो जब हम श्रीमद् भागवत को शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें हमें विषय संबंध कार्य प्रयोजन ढूंढने पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत केवल शास्त्र नहीं है, इसकी बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन ये विषय प्रयोजन की जो बात आती है इसलिए मुझे कहना पड़ा। इस श्लोक में धर्म प्रोजित कही जवा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन इसका विषय है। और धर्मक्षराणाम सतम निर्मक्षर संत इसके अधिकारी है। बोध बोध भाव संबंध है। अब रहेंगे प्रयोजन की बात। तो वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदन, तो यह वस्तु वेद्य और वास्तव जो वस्तु शब्द से ही बनने वाला वास्तव शब्द है, ये वास्तव शब्द जो है वो भव अर्थ में या विकार अर्थ में, तो यदि भव अर्थ मानती है तो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जीव, और यदि विकार अर्थ मानती है तो ब्रह्म से विक्रमित होने वाला जगत, तो जीव जगत और ब्रह्म ये तीन वस्तु वेद्य है जानने योग्य है, ये इसका प्रयोजन। ये शास्त्रीय दृष्टि से प्रयोजन है और जब प्रयोजन है तो प्रयोजन का कोई परिणाम हुआ करता है। इसका परिणाम शिवदन और तापत त्रयोन्मूलन, तो ये तीन तापों की निवृत्ति कर देता है, भौतिक कल्याण कर देता है, किंतु वास्तव में तीनों तापों की निवृत्ति मात्र ही तो केवल प्राणी का लक्ष्य नहीं है। ये शास्त्रीय दृष्टि का प्रयोजन अवश्य है, लेकिन इस प्रयोजन भी आगे एक प्रयोजन है भागवत का जो यही श्लोक बताता है। श्रीमद् भागवते महामुनिगते किं मापदैरीश्वर सत्यो हित्यवरुद्धकृतगति शुश्रूषण सच्छना। भागवत का परम प्रयोजन तो यह है कि जो जैसे आप भागवत का पठन करती है, पाठन करती है, श्रवण करती है, अनुशीलन करती है, चिंतन करती है, क्यों जो आपके हृदय में ईश्वर का प्रागट्य होता है, यही भागवत का मुख्य प्रयोजन। तो श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है पढ़ने वाला, सुनने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला अपने हृदय में साक्षात ईश्वर की अनुभूति करे, ये इसका मुख्य प्रयोजन। प्रयोजन एक नहीं हुआ करता, एक चीज में अनेक प्रयोजन होते हैं। जैसे हमारे काम शास्त्र में आया है काव्य यश से अर्थ गते व्यवहार गते श्री श्री दक्षत सत्य पर निवर्तये कांता सम्मत उपदेश दीजिए, तो अनेक प्रयोजन होते हैं। तो क्या भागवत को हमें एक प्रयोजन से बात नहीं क्या? तो भागवत एक प्रयोजन से नहीं बद सकती। अभी अभी मैंने विद्वानों की प्रवचन भी सुनी और फिर से प्रयास किया कि बड़े बड़े आचार्यों की टीकाओं का भी अवलोकन किया, लेकिन एक बात अवश्य है क्या कि प्रत्येक टीकाकार का, प्रत्येक व्याख्याकार का, प्रत्येक प्रवचनकार का अपना कुछ आग्रह हुआ करता है। आग्रह रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि हम बिना आग्रह के भी विचार करें तो सर्व का अर्थ अनेक वेदांत को भी मानेंगे। वेदांत तो एक ही है, हम ये कह सकते हैं सारे वेदांत का सार। अब वेदांत उपनिषद मूलक है और उपनिषद का विषय आत्मा परमात्मा, तो जिसका विषय आत्मा परमात्मा है वो विचार करके बैठेगा तो क्या सोचेगा, वो आत्मा और ब्रह्म के विषय में तो विचार करेगा, ज्यादा से ज्यादा विचार करेगा ब्रह्म एकत्व, ब्रह्मात्मा एकत्व, ब्रह्म आत्मा का एकत्व कर दो और आगे से आगे कहां पहुंच जाओ, यही बन गए लक्षण। तो कैवल्य का प्रयोजन के लिए हम अनेक व्याख्या करें, अनेक युक्ति लगाए, अनेक तर्क लगाए, अनेक आचरण को सोचिए। अरे सूझी बात के सूची दो तो कैवल्य का प्रयोजन, कैवल्य भी एक प्रयोजन है, केवल मात्र ही प्रयोजन नहीं है भागवत का, भागवत का केवल एक प्रयोजन, उसके अलावा अन्य भी प्रयोजन हो सकते हैं। और इसलिए केवल शब्द की खींचता करना, अलग अलग आसन करना, जब तक की खींचना हम अपने संप्रदाय के अनुसार भले ही स्वीकार कर ले, पर तटस्थ व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो सीधा अगर केवल नहीं केवल एक प्रयोजन, उसके अलावा भी प्रयोजन हो सकते हैं। और एक बात इसके विषय में और कह दूं कि जैसे आपने सर्व वेदांत सारम में देखा, ऐसे नहीं सर्व भक्ति सारम कहीं देखा है क्या? सभी वेदांतों का सार को बता दिया केवल एक प्रयोजन और सर्व भक्ति सारम कहीं देखा है? अब दोनों बात भाई, जो सर्वभक्ति के सार है वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं है, इसलिए कहीं भी सर्वभक्ति के सार का विवेचन नहीं किया। ये आत्मा परमात्मा जीव जगत और ब्रह्म ये तो वाणी के विषय बना दिए और इनके ऊपर अनेक आचार अनेक प्रकार की व्याख्या करें, तो सर्वभक्ति के सारम ये अनिर्वचनीय विषय है, ये वाणी से परे का विषय है, इसलिए ये केवल अनुभूति का विषय। जब भक्ति करोगे तो भक्ति के द्वारा जो अनुभूति होगी वही भक्ति का प्रयोजन होगा, उस प्रयोजन को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, व्याख्या नहीं कर पाएंगे, वाणी का विषय नहीं कर पाएंगे। हाँ भक्ति के भेद तो कर पाएंगे, भक्ति के भेद वैसे हमारे यहां पश्चिम मार्ग में भक्ति के दो से बावन भेद, दो से बावन भेद अरे दो प्रकार की भक्ति, एक का नाम सरणा एक का नाम निर्वाणा। सरणा भक्ति तीन प्रकार की, सात्विक राजस्थाना, और ये तीन प्रकार की भक्ति तीन तीन प्रकार से होती है, नौ प्रकार की, और नवदा भक्ति नौ नाम इक्यासी प्रकार की, और सरणा भक्ति निर्वाणा भक्ति तीन प्रकार की चौरासी प्रकार की। तो ये चौरासी प्रकार की भक्ति है, इसीलिए पुष्टि मार्ग में चौरासी प्रश्नों की प्रार्थना है, और यही उत्तम जब आरम से तीन प्रकार की हो जाती है, इसलिए दो से बावन वैष्णवों की प्रार्थना है। मेरा एक परामर्श है कि ये प्रयोजन वाली बात, ये विषय वाली बात, ये तो महापुरुषों की देखभाल हो, वो चिंतन करें, स्मरण करें, मनन करें, विचार करें, आपके लिए मेरा परामर्श। संसार
Thank you.
ब्रह्मांडस्य न केवलं ब्रह्ममण्डलस्यैव किन्तु निर्भूमण्डलस्य भूषणभूताः विद्वद्वरेण्याः वासुदेव कृष्णमहोदयाः सभापतिपदे विराजमानाः अन्ये च सर्वे विद्वांसः सभ्यास्ति।
होता है
कहेंगे श्री सत शब्द का प्रयोग करने से सारी बात आती है। अब उसमें निर्मल सराराम को घुसे तो केवल संतों का धर्म नहीं, ये जो कैतव रहित जो धर्म है ये साधारण संतों का धर्म नहीं हो सकता। निर्मल सराराम मात शरीर रहे इससे सुस्पष्ट है कि सज्जन भी समाज शरीर होते हैं, उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर में मात्सर्य और वो मात्सर्य कामना बसाएगा। क्या कामना नहीं है मां मात्सर्य कहा तो वो जो निर्मत सराना सताम प्रोच्छित कई तबो यो धर्म स्वधर्म अत्र अस्मिन् श्रीमद् भागवते निरूप्यते। अब विषय विषय क्या है जिसको विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, विषय है यहां भाई विषय क्या की रूप है इसका प्रतिपादन करना चाहिए ग्रंथकार। तो वेद्यम वास्तव वस्तु मंत्र शिव भाई यहां पर वेद्य है वस्तु। अब वो वस्तु क्या है तो भाई वस्तु तो सबके लिए प्रयोग हो जाता है वस्तु शब्द का। तीन वस्तु है, घटनी एक वस्तु है, पटनी एक वस्तु है, मठरी एक वस्तु है, लेकिन वो सारी वस्तु कैसी है वो कुछ काल के लिए है और वो वस्तु जो कि हमारा उत्पाद्य है वो वस्तु कहते हैं वास्तव। वास्तव माने त्रिकाल हमेशा वो कौन है हमारा सच्चिदानंदोपलक्षित कृष्ण ब्रह्म ही है जो कि था भी है भी और होगा भी। तो वो जो वास्तव वस्तु है अब उससे तो स्वाभाविक है कलिका में न्याय सरस्वती जैसी भावना किया क्या उसके पास में वैसे अर्थों को समर्पण करती है। अब यदि कैवल्य का जो आया कि भाई कैवल्य अब कैवल्य देखा जाए तो साधारण तया बात की है केवलस्थ आओ कैवल्य आओ गया प्रत्यय होगा। अब कैवल्य शब्द का प्रयोग अधिकांश का व्यवहार में मुक्ति रूप होता है व्यवहार और व्यवहार ही शक्ति ग्राहक श्रोमणी है। यद्यपि शक्ति क्रम व्याकरणोपमानों कोशात् वाक्यात् सत्य होता है लेकिन व्यवहार व्यवहार शक्ति ग्राहक श्रोमणी। तो कैवल्य का साधारण अर्थ बुद्धि उपर्थन होता है। तो अब ये कैसे यहां कैवल्य प्रयोजन में उसका कोई न प्रतिबंध नहीं होगा, तो उस स्वरूप में रहे गए जैसे केवल आज देख रहा है, तो वो तो तत्वमसी ब्रह्म स्वरूपता अनुरूप हो जाना, मैंने ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं उसको मुक्ति मान के दिया, उसका नाम शांति जो है वो दुख त्रयाग घाता जिज्ञासा कदम घात के हेतु उनके यहां तापक त्रय का जो विनाश है चिंता भाव मुझे नहीं पता। अब हमारे परमानंदी श्री वल्लभाचार्य चरण पुष्ट मार्ग के हरेर दास्यम धर्मोर्थो हरिदेव ही कामो हरेर दुविच्छैव मोक्ष कृष्णस्य चेत्। ये मोक्ष ये आचार्य चरणों की था, तो वहां मुक्ति का। अब यदि कैवल्य शब्द को हम योग रूढ़ मान लें, भाई शब्द यौगिक होता है, रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, तो उसको यदि योग रूढ़ माने तो जैसे पंकज शब्द है उसका यज्ञ करते हैं कीट से उत्पन्न होने वाली वस्तु, अब कीट से कल्हारा जी सभी उत्पन्न होते हैं, लेकिन पंकज माने और कहने से आपको कमल का ही बोल होता है, तो कई बार को मुक्ति और मुक्ति का स्वरूप भेद है, तो जिसके यहां जो स्वरूप है कई बार परिवार के उसी से कई बार को ले सकते हो, तो इसमें कोई भेद नहीं है। तो यहां भागवत का आज जो है वो क्या है, एकदम वास्तव वस्तु। अब वो वास्तव वस्तु क्या है, तो हमारे यहां सच्चिदानंदोपलक्षित भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ही है, तो कृष्ण ही उसका आद्य है, विषय है, संबंधादि उन्होंने बताई दी। अब प्रयोजन क्या है, तो तापत्रयो तापत्रय का उन्मूलन, तापत्रया भाव, तो जो आध्यात्मिक आज वेद काल बहुत तापत्रय से ग्रस्त जीव है उसका जो अभाव है, यदि उसको उससे मुक्ति चाहनी है तो विद्या भागवत पढ़ो, तो वो उसका प्रयोजन तापत्रय उन्मूलन। तो कहते इसी को वस्तु क्यों नहीं मान देते, यही तो सांख्यों के यहां मोक्ष है, तो कहते नहीं मान से प्रधान उनके यहां अभाव मोक्ष है और हमारे यहां अभाव स्वरूप, इसलिए सांख्यात्मक मुक्ति को यहां पर विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसी बात को ये जो आप ये 25 में जो दिया है, हाँ सर्व वेदान वेदांत सार ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणं पस्पद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येकप्रयोगः। तो देखो सर्व वेदांत सारं, वेदानां अंतःपरेषः पर्यवसानं यत्र असौ वेदा, और जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री ने कहा वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, तो उस उपनिषदों में क्या है, आत्मविशेष चिंतन ही तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य है, और उसमें क्या है कि उनका ऐक्य, तो ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण ब्रह्म चो आत्मा चो अति ब्रह्मात्मानो कयो रही है, ब्रह्म और आत्मा और उनका एकत्व। अब देखो एकत्व क्या चीज है, तो एकत्व एक स्वभाव एकत्व एक में रहने वाला था। अब यहां दो वस्तु तो पहले ही रहेंगे आपने, ब्रह्म और आत्मा, अब उनका एकत्व, वल्लभाचार्य की से श्रद्धा के अद्वैत उसके अंदर और उनके ही अंदर में नहीं कहीं पर जाकर के जीव है और ब्रह्म है भेद मानना पड़े। आदरणीय शंकराचार्य जी की जो षटपदी है उसमें एक पद्य है कि सत्यम भेदा पदमे नाथ तमाहम न मामकी नस्वम सामुद्रोहितरंग वचन समुद्रोहितर अब बताइए कि जब उनके या तो अद्वैत की द्वैत की गंध को भी नहीं सहन करना चाहते लेकिन ये स्वयं और जहां तक मेरा ज्ञान है तो ये सुनते हैं कि आज शंकराचार्य जी की ही संपत्ति है विशेष मुझे इतिहास ज्ञान नहीं है तो यदि ये आज शंकराचार्य जी की संपत्ति है तो यहां पर भी कि नाथ तवा इतना भी और जहां अपने भक्ति में आती हो तो मुमिवांशो जीव लोगे जीव उतर सनातना यदि अग्नि से निकला विस्फोटक का क्या है अग्नि है कोई अतिरिक्त वस्तु तो इस प्रकार से अब जहां पर हिरत्व निरूपित है वहां राहु सरो की तरह से जो राहु का कोई शरीर है राहु का शरीर व्यवहार होता है उस भेद को समर्थन करो और जहां के अद्वय है उसको तार्किक रूप से उसका समर्थन करो और ये ही सभी जो आचार्य हैं उनने अपनी अपनी पद्धति से उसको प्रस्तुत किया है और ये ज्ञान जन्य मुक्ति और भक्ति जन्य मुक्ति दोनों ही है ज्ञान जन्य में कार्यजन्य में और हम जब भगवान की अर्पित होगी तो वो यदि हमारी रक्षा न करेगा तो कौन उतर किया जाएगा तो यदि कृष्ण परे चिंता भक्ति तत्पद पंकजे विषमे दुर्गमे वापी का चिंता मरणे रणे बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं भगवत भक्ति को हृदय में रखते हुए
Oh,
आपने बहुत कुछ सुना और पूर्व वक्ताओं ने जो कहा प्राय सभी ने सारगर्भित बातें कही हैं और कोई अवशिष्ट बचता नहीं है कहने से, फिर भी मैं अपनी आमिला वाणी को निरामिला बनाने के लिए यथानीतम यथामति के अनुसार मैं भी कुछ आपके समक्ष वर्णन करता हूं। देखो इस विवेच पत्ति के पहले आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि शास्त्र वेताओं ने ब्रह्म का स्वरूप द्विविध बताया है, वृत्त धर्माश्रय है परमात्मा में वृत्त धर्म रहते जीव में नहीं रहते, लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा तो है ही वृत्त धर्माश्रय, वो निर्गुण भी है वो सगुण भी है, वो निराकार भी है वो साकार भी है, इसमें कोई वैमत्य नहीं है। पहले आप ये समझें कि देखो निर्गुण ब्रह्म किसको कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म तो वो है जिसमें कोई सत्वार गुण विशेषण लगते नहीं और जो स्वयं को अति में है और तीन बंधु है वो ही भगवान नारायण जिस समय निराकार निर्विशेष होता है उसी समय उस भगवान नारायण का नाम ये शास्त्र वेदता प्रदान को निर्गुण ब्रह्म पद से व्यवहार करते हैं। अब जब वो ही भगवान नारायण सत्वगुणोपाद विशिष्ट बन जाता है सत्वगुणावच्छिन्न बन जाता है तब वो ही ब्रह्म सगुण कहलाने लगता है, उसमें सगुण को वासना होने लगती है। परमार्थतः सांख्य योग आदि शास्त्र और शांकर वेदांत शास्त्र के अनुसार जो ईश्वर को पुष्कर परासमन निर्लेप है वो कुछ भी नहीं करता। सप्तम रजस्तम प्रकृति गुणास्त्री युक्त परम पुरुष एक हास्य धरते स्थितिया हरिवंश हरि संज्ञा, तो प्रकृति जो है वो ही जगत उत्पादना है वो ही जगत उत्पादना है और वो ही जग जगत संहारण है, लेकिन तय युक्त पुरुष जो वो सत्गुणों का विशिष्ट वो ही जब पुरुष जीव बन जाता है तब उसकी ये तीन संज्ञा बन जाती है ब्रह्मा विष्णु। जब वो सत्गुण अवच्छिन्न होता है तब तो वो विष्णु कहलाने लगता है, जो स्थिति जगत की जो स्थिति है उसका निमित्त कारण वो ही है, और जब जगत की उत्पत्ति होती है उस समय सत्व में रजो में सत्व सत्व अवच्छिन्न वो ही नारायण भगवान ब्रह्मा कहलाने लगता है, उसी का नाम ब्रह्मा हो जाता है, और जिस समय इसका प्रलय करना होता है उस समय वो ही तमो मिश्रित सत्वावच्छिन्न रूप कहलाने लगता है, लेकिन पुरुषपद वाच्य जो पूरी अवस्था है उसमें न सत्व है सत्व है सब लेकिन सम बल है कोई चार कम नहीं, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को ही माना गया है। अब इस विवेच पद में पहले आप ये समझें कि इस पद के बीच में कोई विशेष वाचक पद नहीं है, इस पद का व्याख्यान में पूर्व में भी मथुरा में के सत्योपी पद में है मैं कर चुका हूं और उसी में मैंने बतलाया भी था, लेकिन इसमें पहले विचार करो कि इस पद में एक भी पद विशेष वाचक नहीं है, ये सारे पद जितने भी पद हैं इस पद में वो सभी विशेषणात्मक है और विशेषण कोई प्रधान होता नहीं, विशेषण सदा प्रधान पद विशेष वाचक पद को ही प्रधान माना जाता है, तो यहां विशेष वाचक पद इसके पूर्व में और अंत में भी श्रीमद् भागवत आता है, इसलिए ये श्रीमद् भागवत के ही सारे विशेषण हैं। सर्व वेदांत सारम ब्रह्मात्मिकत्व लक्षणम अद्वितीय वस्तु कैवल्यम श्रीम श्रीमद् भागवत के ही विषय है। ये श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ संसार, न्याय और सभी दर्शन, कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसका कि इसमें दर्शन न मिलता। श्रीमद् भागवत में सभी दर्शनों का दर्शन है और सभी सांख्य योग आदि शास्त्रों का भी दर्शन है। कोई कहता है कि हाँ कश्चित धर्म विशेष और धर्म प्रवचन कई तरह, ठीक है, मूल्य मूल्य मंत्र भिन्ना के अनुसार सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न होती है, मैं इसको नहीं मानता। मेरी समझ से श्रीमद् भागवत में किसी धर्म विशेष को प्रतिपाद्य वर्णित ही नहीं किया। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय तो एकमात्र संसार साधिष्ठात्री परमात्मा श्री कृष्ण है। क्यों कि देखो लिखा है इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संहित, ये ब्रह्म संहित पुराण है या ब्रह्म पद से वेद का ग्रहण नहीं किया जाता, यहां ब्रह्म पद से पर ब्रह्म का ही वाचन। अंत में भी विचार करो राजा परीक्षित ने अंत में क्या कहा, ये नहीं कहा कि मुझे भक्ति सुनाई, कि आपने मुझे मुक्ति दे दी, कि आपने मुझे ये कर दिया, ये कुछ नहीं कहा उसने। राजा परीक्षित ने अंत में कहा सिद्धो अवता कर्मात्मना श्रावितो यच मे साक्षात अनाथ निधनो हरि, अनाथ निधनो हरि श्रावित, आपने मुझे अनाथ निधन हरि का श्रवण कराया, तो आपने वो हरि का विष्णुयत परम पदम, जिसको परम पद कहते हैं वो परम पद का दर्शन आपने मुझे करा दिया, अब मुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। तो क्या किया था हरि को सुनाया तो हरि कैसा है अनाथ निधन है, तो जो अनाथ निधन है वो ही वास्तव वस्तु, उससे अतिरिक्त तो कोई वास्तव वस्तु है ही नहीं। हाँ उसके अवान्तर भेद में ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि ईसा भाष्य सर्वम यत्किंचित जगत ज्ञान जगत तेरे तक तेरे मुंजीता मात्र कश्यप सर्वम खल्पदम ब्रह्मावली हिरण्यकश्यप किंचनौ, इन सभी वचनों के अनुसार ये माना जा सकता है उस परमात्मा में इन सब पदार्थों सबका समान सत्य प्राप्त होता है, ठिकाने ठिकाने मिलता है कि ये दृश्यमान और अदृश्य जितना भी जगत के चराचर जगत है ये उस विराट स्वरूप में सब विद्यमान, उसी के रोम रोम में बस रहा है और एक ब्रह्मांड नहीं है अनोट कोट ब्रह्मांड, कोट कोट ब्रह्मांड का नायक वो ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। अब श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कोई कहता है कि कोई राजा परीक्षित की मुक्ति है, क्या ये भगवत लीलाओं के सुनने से किंवा ये चंद्रवंश का उपाख्यान या सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन या अन्य कथानकों के सुनने से उसकी मुक्ति हो गई, तब तो कथाने की दुनिया बढ़ेगा उपाख्यान उपन्यासों से ही मुक्ति मिल जाएगी, क्या जरूरत है। अरे ये तो एक ब्याज मात्र है, परमार्थ तो आप विचार करो कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है सनई सनई जब उसकी ज्ञान वृद्धि होती है तब ये भागवत हमको उपदेश करती है, ये चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है आत्मा को, वो अबे तुम है कौन, एकदम शरीरम किमर्थम संतप्तवान, ये शरीर तुझे मिला क्यों है, इसलिए शरीर को प्राप्त किया तेरे क्या कारण है, कि ये आदि इत्यादि जगह में तुम हमको पीड़ित कर रही है, क्या कारण है कि मैं निर्धन हूं ये सदन इत्यादि विचार जहां आज जो प्रेरित होते हैं उन सबका समाधान एकमात्र श्रीमद् भागवत से होता है। वो एक ऐसी औषधि है ये कल्पत तत्व के समान उन्नशित हो रही है श्रीमद् भागवत। अब यहां श्रीमद् भागवत के इशारे विशेषण वेद के अर्थ का निश्चय होता है कि इस वेद के मंत्र का यह भक्ति नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं और भक्ति ही भक्ति है, ऐसा कभी संबंध नहीं हो सकता। देखो शब्द की तीन शक्ति है, अवधा लक्षण और व्यंजन। सबसे पहले शक्ति अवधा है, संकेत अर्थ को प्रतिपादन करने वाली जो शक्ति है उसको अवधा शक्ति कहते हैं, और वो बलवत्तर शक्ति। सबसे पहले उसी शक्ति का प्रवेश अर्थ परिज्ञान के लिए होता है और
तो आप स्वयं भी एक भक्त हैं, इसको भी हम जानते हैं। भरत मुनि ने नई भक्ति में भक्ति को रस माना है, लेकिन वैष्णवाचार्य ने हरि भक्त रसामृत सिंधु तो एक ग्रंथि है, पंचम और शाकिल भक्त। तो आप इसकी चिंता मत करें, ये तो विद्वानों के लिए आनंद का विषय है कि वो नृत्य कुछ नया बोलते हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप बड़े धैर्य से विराज रहे। परम पूज्य अहर्निश भगवत सेवा परायणांतकरण वल्लभ वंशावतंश अनंतश्री भूषित परम वितराग गोस्वामी वर्य गोकुल से पधारे हुए आचार्य वर्य श्री चिम्मनलाल जी महाराज श्री से, जो कि हमारी आज की सभा के विशिष्ट अतिथि पद पर विराजमान है और यहाँ पधारे हैं, आप श्री से करवद प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन हमें प्रदान कर अनुग्रहित करें।
Thank you.
तो श्रीमद् भागवत में बारह स्कंद है, छह स्कंद में महात्मज्ञान और छह स्कंद स्वतंत्र सरस्वती कृष्ण की महिमा प्रतिभा करेगी। और यही जो वर्ण विषय भगवत लीला होते हैं, आत्मा रामायण
स्वरूप और ये जो दस वर्ष के अंदर में तो भगवान अत्यंत समान होकर प्रकट हुए और या तो इसको जो अलौकिकता या जगत में अनुभव करें, जैसे कोई सदर्भ पराय जीवन हो और वहां को स्थान हो, जैसे कि आज अवस्थल तीर्थ भारत
Thank you.
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। परमादरणीय श्री सभापति महोदय, परम आदरणीय अतिथि महोदय श्री गोस्वामी जी और मन पर स्थित ब्रज की विभूतियाँ, अगाध पांडित्य युक्त पंडित मंडली, वैष्णवगण और वैष्णवी, मैं सबका यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। मैं प्राय ऐसे ही आयोजन करता हूँ, इसमें ब्रज के बड़े बड़े भक्त विद्वान लोग आए और उनके मुख से भगवत संबंधी गुणानुवाद श्रवण करें। आय का आयोजन भी उसी के कड़ी में है और मैं अपने को कृतकृतार्थ समझता हूँ कि ऐसे ऐसे विद्वानों का दर्शन होना, भक्तों का दर्शन होना बड़ा ही कठिन है और सबको एकत्रित करके एक मंच पर लाना और भी कठिन है और उसमें भी उनकी ये भागवत की वाणियों का सुनने का अवकाश भी लोगों को कम मिलता है। इसलिए मैं आयोजन करता हूँ, उनका दर्शन भी होगा और उनकी मधुर वाणियों का, भगवान का गुणान कीर्तन बाद भी सुनूंगा। तो आज मैं बहुत ही प्रसन्न और कृतार्थ हूँ। मैं विद्वान तो एकदम है ही नहीं हूँ, कुछ मैं थोड़े से अपने गुरु वर्गों से कुछ सुना है, कुछ विद्वानों से सुना है, उन्हीं की बातों का चर्बित चरवण, उन्हीं का उच्छिष्ट मैं ग्रहण करके दो एक बात कहूँगा। वैसे तो हमारे प्रथम वक्ता से लेकर हमारे भट्ट जी और सब लोगों ने अद्भुत इस श्लोक की व्याख्या की और भगवत का, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय बतलाया, भक्ति। मैं उन्हीं में से थोड़ा सा जूठन लेकर के आप लोगों के सामने खूब संक्षिप्त में दो एक विचार उपस्थित करता हूँ। किसी भी शास्त्र का विचार निर्णय करने के लिए हमें उपक्रम, उपसंहार, अर्थापत्ति इत्यादि सब विषयों का विवेचन ये विचार के अंग है। इनके सार में पहले देखा जाता है, जबकि शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कहा, आप समस्त वेद शास्त्रों उपनिषदों को जानते हैं, विशेष करके अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी जी से श्रवण किया है, कलयुग की आयु भी बहुत थोड़ी सी मनुष्यों की है और बड़े मंदभाग्य हैं, इसलिए मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, उनकी आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, जयात्मा संप्रसिद्धति। पुरुषों के लिए नहीं कहा, आत्मा के लिए, जयात्मा संप्रसिद्धति, कैसे आत्मा प्रसन्न होती है, आप कृपा करके बतलाइए। उसी के उत्तर में पहले ही उपक्रम में उन्होंने बतलाया, सवई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्खजे अहुत्तक अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। प्राणी मात्र के लिए अधोक्षज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में जो अहेतुकी भक्ति है, कामना वासना रहित ज्ञान और कर्म से अनाच्छादित, केवल मात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही गुरु वैष्णव के आनुगत्य में जो शरीर की मन की और इससे भी अतिरिक्त भावना से जो चेष्टाएं होती हैं उसको उत्तमा भक्ति कहा गया। इसी से ही जयात्मा संप्रसिद्धति, जयात्मा संप्रसिद्धति उन्होंने बतलाया, और भी बतलाया उसी पर, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत आशु ज्ञानम वैराग्यम ज्ञानंच यदहेतुकम्। इसको भी बतलाया, यदि भगवान श्री कृष्ण में ऐसी अहेतुकी भक्ति की जाए, साथ ही साथ में ज्ञान भी माने निर्विशेष ज्ञान को निर्देश करने वाला नहीं बल्कि तत्व ज्ञान, कृष्ण के माधुर्य का ज्ञान, ऐश्वर्य का ज्ञान, ये सब तत्व और संसार के प्रति वैराग्य अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। उन्होंने यह भी बतलाया, अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुरुवंथ आत्म प्रसीदनम। ये जो कवि लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये लोग भगवान की नित्य भक्ति अहेत की भक्ति है उसको आत्मा के प्रसन्न होने के लिए करते हैं, इसलिए भक्ति ही हम लोगों का प्रतिपाद्य विषय है भागवत का। नष्कर्म में भी अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, जबकि ये परम निर्मल ज्ञान भी है, यदि भगवान का अनादर करके किया जाए तो उसकी शोभा कैसे हो सकती है। इसलिए उस ज्ञान निर्मल ज्ञान को भी की भी कोई महत्ता नहीं है, वो आदरणीय नहीं है। हमारे देवर्षि नारद जब साधन कर रहे थे और साधन करते 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 जब मृत्यु आई तो मृत्यु के सिर पर अपने पैरों को रख करके प्रयुज्यमाने तां शुद्धां भगवती तो मोक्ष इत्यादि नहीं भागवती तनु, उन्होंने भागवती तनु को ग्रहण किया और फिर तो गोलोक वृंदावन वैकुंठ स्वर्ग इस लोक में सर्वत्र ही गमनागमन करते हुए लोगों का इस भक्ति के द्वारा ही उद्धार किया। अभी भी हम समझते हैं कहीं न कहीं किसी रूप में वो जरूर होंगे भूतल में, हम लोग उनको पहचान नहीं रह रहे हैं। जब व्यास जी ने समाधि में परम पुरुष को देखा, पुरुष अपश्यत पुरुषम पूर्ण, पुरुष पूर्णम माने अपनी शक्ति से युक्त परिकरों से युक्त, नंद बाबा यशोदा मैया सखा लोग गोप गोपियां सारे लोगों के साथ में भगवान को पूर्ण रूप में देखा, और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं बाल्य लीला से सब द्वारका की जितनी लीलाएं हैं सबको भी उन्होंने ध्यान में देखा जैसे हाथ में आंवला दिखता है। और तब क्या किया, जस्या वही सुयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्धत पुंस शोक मोह भया। तो ये श्रीमद्भागवत की रचना की जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए किस लिए, इस उत्तमा भक्ति को उनके हृदय में प्रवेश कराने के लिए। और भी आगे फिर कहते हैं अभ्यास में, आत्मा रामस्य मुरुयो निर्गंथो गुरुक्रमे कुर्वांत है तो किं भक्तिं इत्थं भूत गुणोहरि। भगवान की ऐसे गुण हैं कि आत्माराम सुखदेव गोस्वामी जी पहली अवस्था में और सनक सनंदन सनातन ये सब पहली अवस्था में ब्रह्मवादी निर्गुण नरगुंड में निपरिनिष्ठित, किंतु भक्ति के गुणों ने उनको खींच करके लाई और भगवान के चरणों का के गुणारूपी मकरंद में उनको लगा दिया। यदि जैसा कि श्लोक में है, सर्वेदांत सारम जद ब्रह्म एकात्म लक्षण वस्तु अद्वितीय तन्निष्ठम कैवल्य प्रयोजन, कैवल्य का यदि यहां पर मुक्ति ही होता, विशेष करके शायुज मुक्ति, तो भागवत में उसका खंडन कैसे किया। श्रेयसुति ही भक्ति मुदर्शक जे कवल बुद्ध लब्ध है तेजाम असौ क्लेश ली व नद्धा स्थूल तुषाव घाती ना, जैसे थोथी भूसी को जिसमें चावल के कण नहीं है उसको लाखों जन्म तक कूटने से भी एक दाना नहीं आएगा, ऐसे ही आत्मबोध के द्वारा कभी भी जीव का कोई भी कल्याण नहीं। अरे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो मुक्ति को व्याघ्र आत्मगीलनी, आत्मा को गिलने वाली, उसमें तो फिर आत्मा का एकदम सर्वनाश हो जाता है, वो बाग के समान आत्मा को निगल जाती है, फिर उसमें सुख की अनुभूति कहाँ होगी, कौन करेगा, जब आत्मा की ही कोई गति नहीं रही तो ये सुख का अनुभव करना। तो ऐसा निर्वाण मुक्ति जिसको कहते हैं वो कहाँ से उसमें सुख है, कौन उसको चाहेगा। इसलिए दियमानमपि न गृहणी, दैनिक पर भी उस मुक्ति को नहीं लेते। और भी कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उद्पास्य न मंत्रय, उस ज्ञान को कि तो बात ही क्या है निर्विशेष ज्ञान की, यहां तक कि कृष्ण षडैश्वर्यशाली है, इस ज्ञान को जब तक नहीं भूलेंगे तब तक कृष्ण की भक्ति मधुर भक्ति रस में प्रवेश नहीं हो सकता। जीव गोस्वामी ने भी ऐसा कहा है। इसलिए यहाँ पर कैवल्य का अर्थ जैसे कि बड़े बड़े विद्वान, पहले हमारे विद्वान ने बहुत ही सुंदर रूप से व्यक्त किया, और हमारे भट्ट जी ने भी बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किया, वही कैवल्य का भाव केवल उत्तमा भक्ति ही श्रीमद्भागवत का ये प्रतिपाद्य विषय है। विशेष करके भगवत प्रेम तो जरूर है श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय, किंतु कौन सा प्रेम, यही भक्ति पांच प्रकार की मानी गई। पहला शांत दास सख वात्सल्य और मधुर, इनमें मधुर जो भक्ति है इसमें समस्त और जो अवशिष्ट चार हैं सबों का इनमें समावेश है। ये मधुर भक्ति भी दो प्रकार की है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय द्वारका इत्यादि की महर्षियों का है और परकीय ब्रज की गोपियों का है। इन गोपियों में गोपियां का कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम था, उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव, जो और कहीं नहीं देखा जाता। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं उनके लिए, न पारे हम निर्बद्ध संयुजा, तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति जो है परम निर्मल है, मैं ब्रह्मा की आयु लेकर के भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जब गोपियों के लिए उन्होंने ऐसा कहा है तो राधा जी का प्रेम अनाराधितो न्यूनं भगवान हरिश्वर, उन गोपियों में भी श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की प्रिया हैं। उनमें यहां तक कि मादनाख्य भाव तक भी भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोहन और अंत में मादन, ये मादन भाव ललिता विशाखा इत्यादि किसी में भी नहीं है, वो एकमात्र श्रीमती राधिका में है, वह जीव को दिया नहीं जा सकता। इसलिए उसकी प्रेम की राधिका जी के भाव की केवल शोभा ही दी जा सकती है, राधिका दास्य ही उसकी शोभा है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय मैं समझता हूँ कि यही राधा जी का जो प्रेम है उनकी दासी होना है, यही उनका वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो।
मैं मंच पर विराजमान सभी विद्वानों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि महर्षि का ये कथन है कि सभा की पूर्णता के पश्चात सभी विद्वान प्रसाद ग्रहण करके ही पधारे, ऐसे आपका आदेश है, तो आप सभी प्रसाद लेकर के ही आए। और अब अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे आज के सभाध्यक्ष पंडित प्रवर श्री वासुदेव कृष्ण जी महोदय से कि आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो।
अव्यक्तम शुभ स्वान्ते यशाय व्रतम ब्रह्मैकन्निखिलं जगत् विदधिया यज्ञार्थसर्वयोगी सत्ता दार्शनिकै अभाण सत्ता दार्शनिकै व्यवहार्यतो बुद्धिश्च बहुधारी बुद्धिश्च बहुधारी Thank you.